नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा पर बात करने वाले हैं। ये डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने लिखी है और वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन पर आधारित है। इसमें एक अध्याय है युग शक्ति की प्राण प्रतिष्ठा गायत्री तपोभूमि में। आज हम इसी को गहराई से समझेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि गायत्री तपोभूमि मथुरा की स्थापना कैसे हुई, क्या प्रेरणा थी और वंदनीय माताजी का क्या योगदान रहा।
जी बिल्कुल, ये अध्याय असल में एक आध्यात्मिक संकल्प के साकार होने की कहानी है। हम पुस्तक में दिए गए तथ्यों के आधार पर देखेंगे कि ये सब कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ।
हाँ, और इसकी शुरुआत ही एक दिव्य अनुभूति से होती है ना, वंदनीय माता जी के ध्यान के अनुभव से।
बिल्कुल सही, उन्होंने ध्यान में एक ऐसा मंदिर देखा जहाँ माँ गायत्री विराजमान थी और हजारों लाखों लोग आ रहे थे, ज्ञान ले रहे थे, कष्टों से मुक्ति पा रहे थे। वो सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, वो तो एक लोक कल्याण का केंद्र था।
और देखिए, कमाल की बात यह है कि ठीक उसी दिन परम पूज्य गुरुदेव को भी साधना में कुछ ऐसा ही संकेत मिला।
हाँ हाँ, यही तो अद्भुत संयोग था। उन्हें भी अपने गुरु सत्ता से संदेश मिला कि एक ऐसा केंद्र बनाना है जहाँ साधक आए, सच्ची साधना करें, जीवन का वृहद उद्देश्य समझें। मतलब दोनों की अनुभूतियों का सार बिल्कुल एक था और इसी से वो संकल्प जागा तपोभूमि बनाने का।
संकल्प तो हो गया, पर फिर अगली बात जमीन। घर में पैसे भी बहुत कम थे, पुस्तक में लिखा है सिर्फ 6,000 रूपए।
जी, सिर्फ 6,000 रूपए। मथुरा में गायत्री टीला नाम की एक जगह देखी गई थी पहले
जी,
पर वो ठीक नहीं लगी। जीर्ण शीर्ण थी, यमुना के कटाव का भी डर था।
तो फिर
महीनों तक तलाश चलती रही।
हाँ, कई महीने प्रयास हुए पर कुछ जमा नहीं। तब वंदनीय माता जी ने फिर से साधना का ही सहारा लिया
और तब उन्हें वो देखा एक खास जगह से, जैसे कोई रोशनी उठ रही हो, एक दिव्य स्पंदन महसूस हुआ उन्हें।
अच्छा, फिर क्या हुआ, क्या वही जगह मिली?
जी, जब वो गुरुदेव के साथ वहां गई मथुरा वृंदावन मार्ग पर, तो गुरुदेव ने देखते ही पहचान लिया। उन्होंने कहा कि ये तो महर्षि दुर्वासा की प्राचीन तपोभूमि है, हमारे काम के लिए सबसे उत्तम। और अच्छी बात ये हुई कि वो जमीन वो आसानी से मिल भी गई, फिर रजिस्ट्री भी हो गई।
वाह, ये तो बड़ी बात थी, जमीन मिल गई। लेकिन फिर निर्माण के लिए पैसा? गुरुदेव तो अपने तप के नियमों के कारण किसी से मांग नहीं सकते थे।
हाँ, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी और यहीं पर वंदनीय माता जी ने वो किया जो सच में असाधारण है। वो क्षण तो बहुत मार्मिक है। उन्होंने एक शब्द कहे बिना अपने सारे आभूषण, जो भी उनका निजी धन था, सब लाकर गुरुदेव के चरणों में रख दिया।
सच में अपने सारे गहने? ये तो
हाँ, सारे। सोचिए जरा, स्त्रियों का आभूषणों से एक स्वाभाविक मोह होता है, पर उन्होंने ये दिखा दिया कि व्यक्तित्व का असली श्रृंगार तो तप है, विद्या है, सोना नहीं। पुस्तक में यह भी लिखा है कि उन्होंने कीमती वस्त्र भी त्याग दिए, एकदम तपस्वी जीवन अपना लिया।
इसकी तुलना भी की गई है शायद।
जी, श्रोत में इसकी तुलना माता सीता से की है, जैसे वो सब ऐश्वर्य छोड़कर राम के साथ वन चली गई। ये दिखाता है कि आध्यात्मिक लक्ष्य कितना बड़ा था उनके लिए, व्यक्तिगत सुख कुछ नहीं।
और उनके इसी त्याग, इसी समर्पण से निर्माण का रास्ता खुला।
बिल्कुल, फिर काम शुरू हुआ, तपोभूमि ने आकार लिया और मंदिर ठीक वैसा बना जैसा माताजी ने ध्यान में देखा था, बिल्कुल वही रूप।
फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई होगी।
हाँ, प्राण प्रतिष्ठा से पहले विशेष साधनाएं हुई। 2400 तीर्थों की रज, 2400 पवित्र सरोवरों, नदियों का जल, ये सब लाया गया और भी बहुत सी गोपनीय क्रियाएं हुई ताकि वो स्थान, वो मंदिर हमेशा जागृत रहे, चैतन्य रहे। पवित्र यज्ञशाला बनी, साधना सत्र शुरू हुए और दूसरी योजनाएं भी चलने लगी।
और फिर तो लोगों का आना भी शुरू हो गया होगा, दूर दूर से।
हाँ बिल्कुल, लोग आने लगे और वंदनीय माता जी वो सबको अपने बच्चों जैसा मानती थी। पुस्तक कह दी है कि लोगों को उनका वो माँ जैसा स्नेह, वो वात्सल्य ही खींच लाता था और वो खुद भी हमेशा कोशिश करती थी कि लोगों का आत्मिक विकास हो, उनकी चेतना शुद्ध हो।
तो कुल मिलाकर एक दिव्य दर्शन, अटूट श्रद्धा और वंदनीय माताजी का वो निस्वार्थ त्याग, इसी ने गायत्री तपोभूमि को संभव बनाया।
निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा, उनका समर्पण ही इसकी बुनियाद है।
ये पूरी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक मजबूत आध्यात्मिक इच्छा शक्ति बड़ी से बड़ी भौतिक बाधाओं को भी पार कर सकती है।
सही कहा, और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारी अपनी भीतरी दुनिया, हमारे संकल्प और बाहरी यथार्थ में कितना गहरा नाता हो सकता है। कैसे एक व्यक्ति का समर्पण इतने सारे लोगों के कल्याण का दरवाजा खोल सकता है। यहाँ एक विचार आता है मन में, आज के समय में जब हम सब अपने अपने हितों में इतने उलझे हैं, क्या ऐसे निस्वार्थ समर्पण के लिए ऐसे त्याग के लिए कोई प्रेरणा कोई जगह बची हमारे जीवन में, सोचने वाली बात है।